ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीशुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा ध्रुमयोः पततो रवम् तत्रा जग्मुः कुरु श्रेष्ठ निर्घात भय शंकितः।
हरे कृष्ण। श्री भगवान के अत्यंत महत्वपूर्ण वात्सल्य लीला और अपने भक्त देवर्षि नारद के कृपा का अनुगमन लीला हम लोग सुने। महत कृपा अनुगामी भगवत कृपा। इसके बाद आगे की लीला को सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं। जब नल कुबर मणिग्रीव श्री भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम और परिक्रमा करके अपने लोक चले गए भगवत भक्ति से भावित होकर, इसके बाद की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक नल कुबर मणिग्रीव अपने लोक को नहीं गए तब तक कोई नहीं आया, ये भी भगवान के एक विशेष इच्छा से घटित हुई। उस समय केवल बच्चे ही देख रहे थे उस घटना को। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि गोपा नंदादय ने नंद इत्यादि समस्त गोपगण जब द्रुमयोः पततो रवम वृक्ष गिरने का आवाज सुने, तो सुनने के बाद तत्र आजगमु वहाँ आ गए। सुखदेव गोस्वामी संबोधन करते हैं महाराज परीक्षित। वहाँ उन लोगों के आगमन का कारण बहुत जोर से आवाज था और इसके साथ आवाज इतना भयंकर था कि लग रहा था कोई वज्रपात हो गया, बहुत जोर से आवाज हुई। तो निर्घात भय शंकिता, निर्घात वज्रपात हुआ है इस भय से सशंकित होकर सब लोग दौड़े। और किधर आवाज हुआ है इसका पता करते हुए आए, वो नंद भवन में ही हुआ है। तो कोई ऐसा बम ब्लास्ट जैसा बहुत भयंकर आवाज हुआ, तो सभी के मन में भय हो रहा था कुछ अनिष्ट हो गया। तो सब लोग भयभीत होकर दौड़ते हुए आए, सशंकित थे, भय शंकिता भय से शंकित थे। तो आने वालों में नंद बाबा की भी चर्चा है और भी गोप आए साथ में नंद बाबा। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि उखल बंधन में दामोदर जब बांधे गए माँ जशोदा के द्वारा रस्सी में, तो उस समय नंद बाबा नहीं थे, कहीं गए होंगे किसी कार्य में। नंद बाबा प्रथम बार देखे कि ये बंधा हुआ है। तो आने के बाद तो चर्चा का तो विषय यही था कि ये कहाँ कैसे गिर गया, क्या हुआ, कोई आंधी तूफान नहीं, कैसे गिरा। तो सभी लोग आकर इस पर चर्चा करने लगे। भूम्याम निपतितौ तत्र ददृशो यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तद विज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम। सभी लोग उपस्थित होकर वृक्ष को देखे और देख करके चकित थे, विमोहित थे। विशेष रूप से सभी लोग मोहित थे, सबको आश्चर्य हो रहा था किसका काम है, कैसे गिर गया। सबके आंखों के सामने वृक्ष गिरा हुआ है लेकिन उसके गिरने का कारण नहीं पता चल रहा है, कैसे गिरा, कोई आंधी तूफान नहीं। और वृक्ष भी बहुत मजबूत वृक्ष था, नीचे से जड़ गया हुआ था, ये गिर कैसे गया, सबके आश्चर्य का विषय था। सभी परिस्थितियों में लोग कृष्ण के अनिष्ट की आशंका करते थे। तब तक पता चला कि जहां वृक्ष गिरा है वहीं पर कृष्ण है। कुछ न कुछ ब्रज में उत्पात होता रहता था, जैसे सकट उलट गया, तो उस समय भी सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कोई आंधी तूफान नहीं, कोई सांड भैंसा नहीं आया, कोई बलवान व्यक्ति नहीं उलटा, ये कैसे उलट गया, उस पर भी सबको आश्चर्य हो रहा था। तो ठीक उसी तरह की घटना हो गई, ये दूसरी घटना कि वृक्ष कैसे उलट गए। तो सब सशंकित थे कि कुछ न कुछ इस तरह की अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके पीछे कोई भूत प्रेत ग्रह कुछ कारण होगा। तो सभी प्रश्न कर रहे हैं कैसे उल्टा कैसे उल्टा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो सामने ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, कृष्ण से बड़े थे, वो बोल सकते थे, तो या कृष्ण के उम्र के थे, जो भी भगवान के इस लीला को अपने आँखों से देखे थे जो कैसे वृक्ष गिरा है। तो जब चर्चाएं होने लगी आपस में कैसे गिरा है कैसे गिरा है, तब उनके साथियों ने बताया कि इसके गिरने का क्या कारण है। आगे कहते हैं, उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम च बालकम कश्यदम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा। सारे ग्वाल बाल इस बात से क्षुब्ध थे कि कैसे गिरा, लेकिन देख रहे हैं कि कृष्ण के कमर में रस्सी बंधा हुआ है और वो उखल से जुड़ा हुआ है, और वह उखल दूसरे स्थान पर था लेकिन वृक्ष के निकट है, और दोनों वृक्षों के बीच में उखल है और कृष्ण किनारे है, कृष्ण के दोनों तरफ वृक्ष गिरा हुआ है। मतलब जो ही कृष्ण इधर आ गए किसी तरह, तो इनके आते ही इधर वृक्ष गिर गया। इसमें भी उनको बहुत शंकाएं हो रही थी कि कोई भूत प्रेत पिशाच राक्षस कुछ ऐसा कर दिया है। वास्तव में किसने गिराया, इस घटना का मूल क्या है, तो इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाल बाल सशंकित थे, मोहग्रस्त थे। कस एदम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा, कैसे गिरा कैसे गिरा, सबके मन में बहुत भारी शंका बनी हुई थी। कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, स्पष्ट नहीं हो रहा था कैसे गिरा, लेकिन इतना दिख रहा था कि ये बच्चा इस वृक्ष के बीच में है, तो कैसे गिरा है, कोई दूसरा जात बुझ कर गिराया इसको मारने के नियत से, यह सोच सोच कर सभी लोग कातर थे, दुखी थे और भ्रमित थे, भ्रम में थे, मोह में थे। तब तक बच्चे बोलने लगे, बाला ऊचू, श्लोक के अंदर ही है, बाला ऊचू अनेनेति तिर्यगतम उलूखलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषा वप्यक चच्छमही। कहते हैं कि सारे बच्चे जो देखे थे वो कहने लगे, अरे इसी कन्हैया का काम है, अनेनिति उंगली से बताते हैं इसी ने गिराया है। तिर्यगतम उलूखलम, जो उखल को घसीट कर लाकर तिरछा फंसा दिया, और विकर्षता ज्यों ही खींचा मध्य गेन, अपने मध्य भाग में कमर में जो रस्सी बंधा है उसको खींच दिया, और खींचते ही ये वृक्ष गिर पड़े, लड़के कहे। और यही नहीं हुआ, हम लोगों ने यह भी देखा, इन दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले और ये दोनों पुरुष इसकी स्तुति करने लगे, घूम रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दो पुरुष भी निकले, इसको भी हम लोग देखे। इस प्रकार बच्चे बोल रहे हैं, सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने घटी है, हम लोग देखे हैं, ये पूरी परिस्थिति को बच्चे बता रहे हैं बिना पूछे। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे गिरा कैसे गिरा, तो बच्चे कहने लगे कि इसी ने गिराया है, अनेन इसने, उंगली से दिखाते हैं इसने, कृष्ण ने। कैसे गिराया, तो तिर्यक गतम उलूखलम, उलूखल को तिरछा करके इस वृक्ष में फंसा दिया, जानबूझकर फंसाया हो या नहीं, उधर से लुढ़काते हुए आया और दोनों वृक्षों के बीच में घुस गया, और उधर घुस जाने के बाद जब फिर से खींचा इन दोनों के वृक्षों के मध्य में जाकर जब खींचा तो ये वृक्ष गिर पड़े, क्योंकि वो उखल दोनों में अटका हुआ था और इसके साथ पुरुषौ अपि अचक्षमही, इसके साथ दो सुंदर व्यक्ति भी सामने आए जिनको हम लोगों ने देखा, अचक्षमही हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है, दो पुरुष भी निकले। नते यदुक्तम जगृहु न घटे तेति तस्य तत् बालस्य पाटनम तर्वो केचित संदिग्ध चेतसः। तो कुछ लोग तो इस बात को सुनकर एकदम विश्वास किए नहीं किए, नते यदुक्तम जगृहु न घटे तेति तस्य तत्, कुछ लोगों ने एकदम विश्वास नहीं किया, तुरंत डांटे चुप रहो छोटे से बच्चे के खींचने से पेड़ गिरेगा, लेकिन मतभेद हो गया, कुछ लोग बात पर विश्वास नहीं किए। बालस्य पाटनम तरो, बच्चे के खींचने से वृक्ष गिरेंगे ऐसा नहीं संभव है, लेकिन केचित संदिग्ध चेत सह, कुछ लोगों को शंका हो गया कि बच्चे उस समय भी कह रहे थे कि इसी के पैर उछालने से सटक गिरा है, लेकिन उस समय भी कोई विश्वास नहीं किया, और आज भी बच्चे कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अचक्षमही, अचक्ष मतलब हम अपने आंख से देखे हैं, सुनकर नहीं कह रहे हैं, हम आंख से देखे हैं कि इसी के खींचने से उखल वृक्ष में फंसा हुआ था, और वृक्षों में फंसा हुआ था, इसने थोड़ा सा जोर लगाया वृक्ष गिर गया, एकदम आंख से देखी हुई घटना है। तो बच्चे इतने जोरदार शब्दों में बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को शंका हो गई, हो सकता है। फिर कुछ लोग चर्चा करने लगे, सभी बातों पर हम लोग नकार देते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन शुरू से ही यही देखा जा रहा है। बताइए उस समय जब पुतना आई थी इतनी विशाल राक्षसी जो बच्चे को लेकर आकाश में उड़ गई, और आकाश में जाने के बाद मर गई, और ये बच्चा उसका स्तन पी रहा था, और जब नीचे गिरी तो वो मरी हुई थी और ये जीवित था, तो आखिर कुछ तो चमत्कार है ना, चाहे जिसका भी हो, तो हो सकता है कि इस बच्चे का ही ऐसा चमत्कार है, कुछ अजीब सा है, अद्भुत है, जिसके कारण पुतना के ले जाने पर भी नहीं मरा, तीर्णावर्त भी लेकर ऊपर गया आकाश में बहुत ऊंचा ले गया, वो भी नीचे गिरा मरा हुआ पड़ा था, और वहां भी जीवित था। सभी लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों को शंका हो गई। और उस समय भी जब शकट उल्टा था, तो शकट भंजन के समय भी वहां शकट टूट गया, वहां एक असुर मरा पड़ा था और ये वहां सुरक्षित बचा था। तो कुछ तो कारण है, इसके द्वारा ही ये घटनाएं घट रही हैं। तो एक विचार यह था कि वृक्षों के गिराने जैसा कार्य जैसा छोटा बच्चा के द्वारा संभव है, नहीं हो सकता, लेकिन कुछ को संदेह हुआ कि कृष्ण नारायण के समान है, और किसी को हो या न हो नंद बाबा को तो मन ही मन होने ही लगा, क्योंकि गर्गाचार्य के मुख से सुने थे, लेकिन वो लोग भगवान के भक्त थे तो यह विचार रखते थे कि भगवान नारायण की कृपा से बच जाता है, लेकिन यहाँ संदेह दुविधा हो गई कि निश्चित रूप से कुछ इसी में ऐसी शक्ति है जिसके कारण ही सुरक्षित बच जाता है। तो उन घटनाओं को देखने के बाद गर्गाचार्य जी के बातों को स्मरण करते हुए नंद बाबा आगे बढ़ते हैं, पेड़ तो गिरा ही है लेकिन बच्चा बंधा है, तो पूछते हैं ये कैसे हो गया, इसके कमर में बंधन कैसे है। तो लोगों ने बताया कि जसोदा जी बांध दी है, क्योंकि आज ये बहुत उत्पटांग काम किया है, इसके उत्पात से परेशान होकर माँ जसोदा बांध दी है, मटका फोड़ा है, बहुत से माखन को बंदरों को खिलाया है, तो इसके शैतानी से परेशान होकर माँ बांध दी है। तो बाबा जब चले आगे बढ़े तो भगवान बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि खोल दीजिए, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, एकदम अबोध बच्चे जैसे देख रहे हैं, कुछ भयभीत जैसा देख रहे हैं। तो भगवान के मूड को, भगवान के मुख को देखकर नंद बाबा को हंसी आ गई, कहते हैं उलू खलम विकर संतम दामना बद्धम समात्मजम, अपने बच्चे को देखे कि उखल में बंधा हुआ है तो विलोक्य नंद प्रहसन बदनो विमोच, तो नंद बाबा को थोड़ी हंसी आ गई। मानो श्री कृष्ण इस रूप में देख रहे हैं कि जब मैया ने बांध दिया है तो बाबा सारी घटना सुनने के बाद हम पीटेंगे। तो जब यह सोचकर डर ना जाए तो नंद बाबा कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेह वात्सल्य में भरकर हंसे और हंसता हुआ चेहरा लेकर कृष्ण के पास गए ताकि बच्चा डरा हुआ है और हमारे निकट जाने से और ज्यादा न डर जाए कि मैया तो माँ तो बांध दी और पिताजी पीटने न लगे। इसलिए नंद बाबा हंसते हुए गए कि इसको भय न हो और जा करके उनको खोल दिए। प्रसन्न बदनो विमोच, माता जसोदा से पूछना नहीं पड़ा कि खोलें कि नहीं खोलें, क्या किया जाए, कुछ नहीं, बस खोल दिए। जबकि इस घटना पर महाराज श्री कहते हैं कि बलराम जी भी नहीं थे और रोहिणी जी भी नहीं थी घर पर। जिस समय कृष्ण बांधे गए उस समय न कृष्ण बलराम थे, न रोहिणी जी थी और न नंद बाबा थे। माँ जसोदा अपने प्रयास से उनको बांध दी। शुरू से सुबह से ही वो उनके लिए माखन निकाल रही थी। अपनी उनका व्यक्तिगत योजना था कि अपने बच्चे को मधुर माखन खिलाना है, बड़ा स्नेह में भर कर सब योजना बनाई थी, लेकिन सारे योजना पर पानी फेर दिया, मटका ही फोड़ दिया और दूसरे घर में जाकर बासी माखन भी बंदरों को लुटाया, बहुत कुछ उत्पाद किया। तो माँ जसोदा व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को बांधी थी। उसने संयोग से नंद बाबा भी सुबह सुबह घर में नहीं थे और रोहिणी और श्री बलराम जी भी नहीं थे। माँ रोहिणी चली गई थी, किसी के घर में कुछ उत्सव था तो वहाँ चली गई अपने पुत्र बलराम को लेकर। तो जब लौटी रोहिणी जी तो देखी कन्हैया बंधा हुआ है। तो कही ऐसे कौन बांध दिया, क्यों बंधा है? तो तुरंत पता चल गया, वहाँ दासियाँ बतला दी कि जसोदा जी बानी है। तब रोहिणी जी कोई विचार नहीं की, गलती करता ही है, बांध दी होगी, चली गई। लेकिन बलराम जी देखे कृष्ण को दुखी तो गए, कहे मैं रोज रोज कहता था कि ऐसा शैतानी मत करो, लेकिन तुम मानते नहीं हो, अब तो बांध दी। तो भगवान मुंह बनाते हुए कहते भैया खोल दो, खोल दो। तो कहते हैं कि मैया बानी है ना, मैया बानी है तो मैं कैसे खोल सकता हूँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं पूछ कर आता हूँ, मैया से परमिशन लेकर खोल देता हूँ। वो भी डर रहे थे कि खोल देने पर मुझको भी पीटने लगेगी। तो बलराम जी गए और जाकर माँ जसोदा से हाथ जोड़कर कहे मैया कन्हैया रो रहा है, उसको खोल दूं? नहीं नहीं, खोलना नहीं है। मैया खोल दो, बहुत रो रहा है, चलो देखो ना कैसे रो रहा है, मुझे पता है, रोने दो उसको, आज दिन भर न भोजन दूंगी और न उसको खोलूंगी, दिन भर बांध कर रखना है। तो बलराम सुनकर एकदम दुखी हो गए, दिन भर नहीं खोलेगी और भोजन नहीं देगी? तो फिर से बलराम हाथ जोड़े, चरणों में गिर कर कहे मैया खोल देता हूँ। नहीं 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 खोलना है। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया, कहे नहीं खोलोगी, क्या समझ कर रखी है, बकरी का बच्चा, ये कौन है पता है तुमको? ये साक्षात नृसिंह है, हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नृसिंह यही है, रावण को मारने वाला श्री राम यही है, त्रिविक्रम जो तीनों लोक को नापने वाला वामन देव त्रिविक्रम यही है। नहीं खोलूंगी नहीं खोलूंगी, बकरी का बच्चा समझती है। जसोदा जी कहती हैं, अच्छा तू कौन है? ये तो नृसिंह है, वामन है, राम है, और तू? मैं महाशंकरषण, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जलता है, क्या समझती है? लक्ष्मण मैं ही था मेघनाथ को मारने वाला। तब जसोदा जी कही, अच्छा छड़ी उठाई और कोई घर बाकी नहीं था, सारा अवतार हमारे घर होने लगा। और बलराम जी चले भाग, हो गया उनकी भगवत्ता। नृसिंह है, वामन है, शंकरषण है, लक्ष्मण है, सारा अवतार हमारे घर होने लगा और किसी का घर बाकी नहीं था। तो बलराम जी भागे और जाकर के कृष्ण के पास कहने लगे, मुझे भी मारने के लिए दौड़ गई। तो इस प्रकार की गलती नहीं करता तो तू दुखी नहीं रहता। अब मैं क्या करूं, तुमको सुधारते सुधारते समझाते समझाते थक गया। तो अब बलराम जी तो बेचारे थक कर चले गए, लेकिन जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा देखे कि कृष्ण बड़ा दुखी है, उखल में बंधा है, तो जाकर खोल दिए। तो एक टीकाकार कहते हैं, माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान की लीला से यह बात सिद्ध हो रही है कि उनके स्वरूप में न बंधन है और न मुक्ति है। एक कल्पना दूसरे लोग करते हैं, जिनको करना हो कर लो। जसोदा अपने स्नेह बात्सल में बांध दी और नंद बाबा दयापूर्वक खोल दिए। लेकिन भगवान में बंधन और मुक्ति नहीं है, वो स्वयं बद्ध और मुक्त, न वो स्वयं बद्ध है न मुक्त है, दोनों से ऊपर है। तो इस प्रकार जब नंद बाबा ने खोल दिया, खोल करके अपने गोद में ले लिए, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नंद बाबा को हंसी आ गई कि देखो ये बंधा हुआ है और भयभीत हो रहा है मुझको देखकर, तो इसलिए हंसे कि इसको किसी प्रकार का कोई क्षोभ दुख न हो। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता जसोदा तथा नंद महाराज को बात्सल स्नेह में बांधते हैं, यही उनकी लीला है। उनमें न बंधन है न मुक्ति है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम बांधे हम खोले, लेकिन भगवान अपने स्नेह और प्रेम में माँ जसोदा और नंद बाबा दोनों को बांधे हैं। वो भी अपना समझकर सुधारने के लिए बांधी और ये दया करके अपना समझकर खोल रहे हैं। ये लोग स्वयं भगवान के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। इसके बाद आगे, गोप भी यस्तत भी नृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्ध तद बसो दारु यंत्रवत। इसके बाद अब दूसरी लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इस अध्याय में अनेक लीलाओं की, छोटी छोटी लीलाओं की चर्चा करते हैं। अब भगवान मुक्त हो गए, उखल बंधन तो लीला यहाँ संपन्न हुआ। और इसके बाद आगे, कभी कभी श्री कृष्ण गोपियों के कहने पर नाचने लगते थे। सर्वशक्तिमान भगवान, संपूर्ण जगत जिनके अधीन है, वो ऐसा लग रहे हैं ब्रज में कि वो ब्रजवासियों के अधीन है। जब गली में चलते थे, गोकुल के गलियों में, तो गोपियां कहती, लाला तू बहुत अच्छा नाचता है, थोड़ा नाचो तो। फुसलाती हैं, तुमको माखन दूंगी, तुमको आज मिठाई दूंगी। तो भगवान कहते, क्या मिठाई बनाई है, तो दिखाती थी। तो अब देखते ही उनके मुंह में लार आ जाता था, लेकिन वो मिलता नहीं। तो जब नाचो नाचो, तुम नाचने लगते थे थिरक थिरक कर मिठाई खाने के लिए। तो अब नाचते थे, कभी कभी कहती थी, हम बहुत सुंदर दही बनाई है, बहुत देखो कितना सुगंध आ रहा है। कटोरी में लेकर दिखाती, अरे दो ना ना, नाचोगे तब। तब नाचते थे। और कभी कभी छाछ पर नाचते थे। कि हिंदी कभी कहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यान लगावे। जिनका चिंतन बड़े बड़े लोग करते हैं, निरंतर ध्यान में समाधि में देखते हैं, ब्रह्मा शिव देवराज इंद्र गणेश इत्यादि जिनका चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं प्रभु को ब्रज की गोपियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे। जाही अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पहिचारे तउ पुनिपार न पावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचावे। कहते हैं ऐसे भगवान को ब्रज की गोपियां, वहां की ग्वालिनियां, छोहरियां मतलब लड़कियां, छोटी छोटी गोपियां, वे लोग कहती हैं कि कन्हैया नाचोगे तो मीठी छाछ पिलाऊंगी। तब नाचने लगते थे, थिरकने लगते थे। इस प्रकार कह रहे हैं, गोप भी स्तुतु भी नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। सुखदेव गोस्वामी बड़े सावधान है, भगवान भी कह रहे हैं कि गोपियों के कहने पर भगवान नाचते थे बालवत, साधारण बच्चों की तरह, कभी कभी और कभी उद्गायती क्वचिन मुग्ध, कभी कभी नाचते थे और कभी कभी गाते थे, भोले भाले अनजान बच्चे की तरह कुछ भी गाते थे, उनको गाने के लिए कहती तो गाते थे। तद्वसो दारु यंत्रवत, सचमुच भगवान ब्रजवासियों के हाथ के कठपुतली थे। दारु यंत्र, दारू यंत्र कठपुतली कहते हैं, काठ के यंत्र, जैसे कठपुतली नचाने वाला पतला सूत अपने हाथ में लेता है और हाथ घुमाता है और नाचते हैं, उसके हाथ में होता है यह दारू यंत्र कठपुतली का नृत्य, उसी प्रकार ब्रजवासियों के हाथ में थे श्री भगवान, नाचते थे। विभर्ति कोच दाग्यप्त पीठ कोन माद पाद कम बाहु छे पंच कुरते स्वानाम च प्रतिमा वहन। कभी कभी विभर्ति क्वचिदा ज्ञप्त पीठ कोन माद पाद कम, कभी कभी कहने पर पिताजी के लिए पीढ़ा लेकर आते थे नंद बाबा को खाने के लिए, कभी पीढ़ा उठा लेते और कभी माँ यशोदा कुछ बोलती कहती तो बटखरा लेकर आते तौलने वाला, और नंद बाबा के लिए खड़ाऊ लेकर आते थे, बाबा आ गए पैर धो रहे हैं तो पैर धोने के बाद काट के खड़ाऊ चाहिए तो उसको लेकर आते, अपने सिर पर रख कर ले आते थे। तो इस तरह से अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देते, कभी कभी पहलवानों को देखकर ताल ठोंकते थे तो हंसने लगते थे गोप लोग, छोटे बच्चा और अपना हाथ अपने जांग पर ठोक कर हम भी कुश्ती करेंगे तो सब हंसने लगते थे, कभी ताल ठोकते कभी अपने भुजाओं पर ठोकते, बाहु छेपम चकुरते अपने भुजा पर या जांग पर हाथ को चलाते, स्वानम च प्रतिमा बहन, ऐसा क्यों करते थे? तो अपने लोगों के लिए प्रेम उत्पन्न करने के लिए, अपने लोगों में प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए करते थे। गोप लोग यह देख करके एकदम खुश हो जाते थे। मानो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन व्यवहारों के द्वारा प्रीति को प्रेम को आवाहन ढो कर वहां ला देते थे, सारे ब्रजवासियों के निकट प्रेम का पिटारी ही पटक देते थे, ऐसा व्यवहार करते थे कि मानो प्रेम ढोकर ला रहे हैं, सब लोग आनंदित रहते थे। इसके आगे कहते हैं, दर्शयन तद विदामलोक आत्मनोभृत्य वश्यताम ब्रजस्वाह वही हर्षम भगवान बाल चेष्टित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन सब लीलाओं के द्वारा सर्वशक्तिमान भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हुए लोक को, संपूर्ण जगत को यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपने भक्तों के अधीन हैं, हम भक्तों के दास, भगत मेरे मुकुट मणि, हम भक्तों के सेवक हैं। आत्मनोभृत्यवश्यता, ये दिखाना चाहते हैं, भगवान की अद्भुत लीला है। सुखदेव गोस्वामी इन लीलाओं का वर्णन करते हुए इस बात को अनुभव करते हैं कि दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम अपने भक्तों के दास हैं। देखिए इस दामोदर लीला में भी कहते हैं एवं संदर्शिता, भगवान ने ऐसा दिखाया, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता। सुखदेव गोस्वामी जब दामोदर लीला का वर्णन कर रहे थे तो तीन श्लोकों में उन्होंने अपना विचार दिया, टिप्पणी 19, 20, 21। तो भगवान के विषय में कथा कहते 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 कभी कभी सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी भी करने लगते हैं, अपना विचार देने लगते हैं। कथा तो चल ही रही है लेकिन कुछ कथा का रहस्य या कथा की शिक्षाएं इसको भी व्यक्त करते जा रहे हैं, वास्तव में कथा की स्टाइल है। तो कह रहे हैं कि एवं संदर्शिता ह्यंग, भगवान ने दिखाया, हे अभिन्न, हे मेरे प्रिय परीक्षित, इस बात पर विचार करते चलो, केवल कथा सुनने से नहीं हो जाएगा बस। तो भोजपुरी में कहते हैं कि कभी कभी कथाएं होती रहती हैं और सुनने वाला हूँ, कारी भरता, हाँ हाँ, रात के समय सोते समय होता है और उसका लक्ष्य होता है सुलाना, बस उससे कोई मतलब नहीं। तो अंत में कहते हैं कहानी गईल वन में, सोचा अपना मन में उस कहानी से कोई मतलब ही नहीं, वो तो चला गया। लेकिन वैसी कथा नहीं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ विचार करते हुए चलना चाहिए। हे मेरे प्रिय परीक्षित, हे मेरे अभिन्न, जरा विचार करो, श्री भगवान दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? भृत्य वश्यता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं भक्तों के अधीन हूँ माने कौन भक्त के अधीन है? सो बसे नापि कृष्ण न जस्येदम सेश्वरम बसे, जिनके बस में संपूर्ण विश्व है, और बड़े बड़े लोकपाल और लोकों के जो ईश्वर हैं, ऐसे ईश्वर जिनके बस में है, शिव ब्रह्मा जमराज कुबेर आदि जिनके अधीन है, जिनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वह भगवान माँ यशोदा के बंधन में पड़ गए, बंध गए, उनके अधीन है। तो अपने भक्तों के मैं अधीन हूँ, यह भगवान दिखाए। इसको दिखाने के लिए लोक में लीला किए। नायम सुखापु भगवान देहि नाम गोपिका सुत, संदर्शिता, सम्यक रूप से दिखाने के लिए। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं, इतने देर तक कुछ लीला कहे तो फिर अब इस पर टिप्पणी दे रहे हैं। दर्शयन तद विदाम लोक आत्मनो भृत्य वश्यताम लोक, तो इस लोक में लोगों को जानकारी देने के लिए, अपनी भृत्य वश्यता को दिखाने के लिए भगवान ने लीला कर रहे हैं। ब्रजस्य वाह वही हर्षम भगवान बाल चेष्टित, अपनी बाल चेष्टा से भक्तों के द्वारा बस में किए जा सकते हैं, इसको दिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह एक अन्य दिव्य मनोरंजक लीला है कि श्री भगवान अपने भक्तों के आनंद वर्धन कर रहे हैं, उनके लिए प्रीतिमा बहन। वे इन लीलाओं को न केवल ब्रजभूमि के निवासियों को दिखलाना चाहते हैं, बल्कि अन्यों को भी जो उनके बहिरंगा शक्ति और ऐश्वर्य पर मुग्ध होकर संसार में फंसे हुए हैं, रस लेना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। किंतु अंतरंगी भक्तों को जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे, तथा बाह्य भक्तों को जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, कृष्ण की ऐसी दासों के बस में रहने की इच्छा का पता चला। जो कोई कोई ऐश्वर्य से प्रभावित है और कोई उनके प्रेम में मग्न है, सबको दिखाना चाहते हैं, सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भक्तों के अधीन हैं। तो इस प्रकार भगवान लीला करते हुए ब्रज में निवास कर रहे हैं। अब आगे एक दूसरी लीला कहते हैं। कृणी भी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युत, फलार्थी धान्य मादाय ययौ सर्व फल प्रद। एक दिन एक फल बेचने वाली आई ब्रज में, और वो फल लेकर आई और अपने टोकरी में लिए हुए सिर पर पुकारने लगी, कोई फल लो, फल ले लो, फल ले लो, पुकार रही थी। तो इतना सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले श्री भगवान अच्युत फल खरीदने की इच्छा से अपने छोटे छोटे हथेली में अनाज लेकर दौड़े। थोड़ा सा घर में से कोई भी गेहूं या चना कुछ भी मिला, जो भी मिल गया उसको लेकर दौड़े, फल खरीदना है। माँ को भी नहीं बताए, चल दिए दौड़ लेने के लिए। तो इस प्रकार जब फल लेने के लिए गए, कौन? सर्व फल फलप्रद, सभी के फलों को देने वाले श्री भगवान। भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार किसी को है, फल तो मेरे मुट्ठी में है, फल मैं देने वाला हूँ। तो समस्त कर्मों के फलदाता फल खरीदने जा रहे हैं। तो लेकर फलार्थी हो गए, फल लेने के लिए इच्छुक होकर चले। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में ही सारा अनाज गिर गया, जो भी लिए थे एक मुट्ठी अनाज लेकर चले, क्योंकि प्रायः गांव में फल बेचने वाले अनाज से तौल कर फल देते हैं, धान गेहूं चावल जो भी मिलता है तो उसे तौलते हैं, कभी कभी बराबर देते हैं, कभी आधा अनाज रख कर आधा से देते हैं, कभी जैसे भी देना हो अनाज से देते हैं। तो भगवान अनाज लेकर दौड़े, लेकिन फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करत द्वयम्। वो अनाज गिर पड़ा, रास्ते में ही बिखर गया। फलैर अपुर्यद यत्नहि फल भांडम पूरिच। और वहां जाकर अनाज तो सब गिर गया, एक दो दाना होगा, जाकर उसके टोकरी पर हाथ ऐसे मारे, कहे दो। तराजू में रखने भर कहां था, जो भी एक दाना बचा होगा कर दो। अब हाथ फैला दिए और वो तो इतना सुंदर कन्हैया को देखकर ही मुग्ध हो गई। इतना सुंदर बालक दौड़ता हुआ फल खरीदना चाहता है, उत्साहित है, फल दो मांग रहा है, तो विचार ही नहीं की कि कुछ लेकर आया नहीं आया, कुछ नहीं, बस उठाकर टोकरी का फल देने लगी। तो एक देने से नहीं हुआ, अभी भी मांग रहे हैं। तो एक फल लेने के बाद खड़े हैं और चाहते हैं तो दे रही है, वो टोकरी की तरफ देख भी नहीं रही है, केवल उठा रही है और उनके मुख की तरफ देख रही है, देते जाती है, एक दो तीन चार, एकदम पूरा यहां तक आ गया। और मस्ती में अभी ले रहे हैं, आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि फल तो लिए, लेकिन उसके टोकरी को फलई अपुर्यद रत्नई फल भांडम अपूरिच, उसके टोकरी को रत्नों से भर दिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब उसके टोकरी में भर गया। जब दोबारा कृष्ण उस फल को लेकर अपने घर में चले गए और तब उसकी दृष्टि कृष्ण से हटकर टोकरी पर पड़ी, तो देखी कि अरे फल के जगह पर रत्न भरा है, सारे रत्नों से भर दिए। तो यह है श्री कृष्ण को देने का फल। श्रील प्रभुपाद इस पर लंबी टीका लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान की इच्छा है कि कोई स्नेह पूर्वक सौहार्द पूर्वक हमें दे, इसलिए मुंह खोलकर भगवत गीता में मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहितम अस्नामी प्रयतात्मनः। तो भगवान तीन चीज वृक्ष से मांगते हैं, जैसे फल भी कहे हैं, अब कोई फल बेचने आ गया तो क्यों नहीं उनकी इच्छा होगी कि हमें दे। पत्रम पुष्पम फलम, पत्ता फूल और फल, तोयम जल। भगवान कोई भी आइटम फैक्ट्री का नहीं बताए, केवल वृक्षों से जो प्राप्त हो सकता है, फल फूल और पत्ता, और जल नदियों में है, कुएं में है, जल भी सुलभ है, कहीं से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमको देता है, भक्ति के साथ देता है, अपनत्व के साथ देता है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, अस्नामी, उसको मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो शर्त केवल इतना है कि वो मुझे भक्ति पूर्वक दे। योमे भक्त्या प्रयक्षति, जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक अपना समझ कर देता है, उसका फल भगवान स्वीकार करते हैं। अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूल कर कुप्पा हुआ है, सोच रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, उसमें से मैं थोड़ा सा कृष्ण को दे रहा हूं, तो कृष्ण उस भेंट को स्वीकार नहीं करते। और तो अपने काम के लिए, अपने ऐश आराम के लिए, अपने परिवार बच्चों के स्त्रियों के लिए है, थोड़ा सा दे दिया। फल बेचने वाली निर्धन थी, आदिवासिनी थी, उसके पास बहुत बड़ा संपत्ति नहीं था, लेकिन कृष्ण को स्नेह पूर्वक दिया, प्रेम पूर्वक दिया, ऐसा बर्ताव कि कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया रास्ते में, फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो, तुम्हारी जब लालसा लेने की है तो तुमने लाया क्या, इस पर विचार नहीं किए। वो तो तराजू में रखने भर अनाज था ही नहीं, सब रास्ते में गिर पड़ा, लेकिन फिर भी बच्चा फल के लिए आया है, यह देखकर भगवान भी नहीं जानती थी बेचारी, भले अनजान में ही वो दी, लेकिन दी भगवान को, ये वस्तु शक्ति है। चाहे भगवान का भजन जानकर किया जाए, अनजान में किया जाए, लेकिन भगवान के पास जो भगवत्ता है, माधुरी है, वो व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि अजामिल प्रसंग में विष्णु पार्षद और जमदूतों के बीच जो बहस हुआ है अजामिल को लेकर, जमदूत कह रहे हैं कि यह नरक का कैंडिडेट है, पापी है, इसको हम लोग ले जाएंगे, भगवान जमराज इसके अपराध के अनुसार, पाप के अनुसार दंडित करेंगे, इसका शुद्धिकरण का उपाय किया जाएगा, फिर इसको भेजा जाएगा ऊंचे लोकों में। तो भगवत पार्षद कह रहे हैं कि ना, तो अपराधी पापी है ही नहीं, पापी नहीं है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्यों नहीं पापी है? तो भगवत पार्षद कहते हैं कि तुम लोग सचमुच धर्मराज के परिकर हो कि नहीं, से बनावटी कह रहे हो, कहीं से आकर जमराज का पार्षद कह रहे हो? तो कहते हैं नहीं, हम लोग पक्का जमराज के पार्षद हैं। तब कहते हैं तो बतलाओ धर्म का क्या स्वरूप है। तो बेचारे प्रवचन किए पूरा धर्म के रहस्य पर। तब भगवत पार्षद फिर हंसने लगे, मूर्खों, अब तो हम लोग तुम लोगों पर दोषारोपण करें कि जमराज पर? यह आश्चर्य का विषय है, यद्यपि तुम लोग अपने को जमराज का पार्षद बताते हो, लेकिन इससे पता चलता है कि धर्म का ज्ञान तुम्हारे स्वामी को भी नहीं है। यदि हो तुम लोग जमराज का पार्षद, तो लगता है कि इस धर्म ज्ञान से वंचित धर्मराज भी हैं, उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। ये बहुत भारी आश्चर्य का विषय है। भगवत पार्षद बहुत आश्चर्य करते हुए कह रहे हैं कि यदि धर्मराज इस तरह की गलती कर सकते हैं, तो साधारण जनता के क्या हाल होगा? तुम लोगों को अब तक कोई क्लास नहीं लिए धर्म के विषय में बताने के लिए, बिना ट्रेनिंग के तुम लोग उनके सेवक हो? अरे मूर्खों, एक बात जान जाओ कि जो भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, उसके जीवन में कोई पाप शेष नहीं है। तब वो जमदूत कहते हैं कि भगवान का नाम लिया होगा तब ना, ये भगवान का नाम कहां लिया? तो कहते भगवान का नारायण किसका नाम है? तो नारायण तो इसके बेटे का नाम था, वो अपने बेटे का नाम पुकारा है। तो भगवत पार्षद कहते हैं अरे मूर्खों, बेटे का नाम नारायण रख लिया है, ओरिजिनली नारायण नारायण का नाम है, भगवान का। हजारों लोग नारायण नाम रखें तो उनका हो जाएगा? तब जमदूत कहते हैं कि मान लिया, नारायण का नाम ही लिया, लेकिन आप लोग सत्य सत्य बताइए, जानबूझकर नारायण का नाम लिया? ये तो हम लोगों से भयभीत होकर अपने बच्चे के लिए नारायण पुकार दिया, ये भी मान लिया, बच्चे के लिए पुकारा, लेकिन नारायण शब्द उच्चारण किया ना, जो भगवान का नाम है। तो ये भगवत नाम की जो वस्तुगत शक्ति है, उसका असर होगा कि नहीं? वस्तुगत शक्ति कुछ समझ में नहीं आया। तब समझाते हैं कि देखो, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देदो जथा नला। उदाहरण देते हैं, ये कोई अज्ञान में नाम उच्चारण करे, चाहे जानबूझकर उच्चारण करे, लेकिन उच्चारण करने वाला का पाप निश्चित समाप्त होगा। कैसे? जैसे कोई जानकर आग को अपने हाथ में पकड़ ले, या एक अनजान बच्चा हाथ अपने हाथ से आग को पकड़ ले, वो आग उसको जलाएगी ही, क्योंकि आग की वस्तुगत शक्ति है दाही का। कोई जानबूझकर आग छुए वो भी जलेगा, और एक खेलता हुआ मासूम बच्चा आग के अंगार को पकड़ ले, उसको भी जलाएगी। आग का स्वभाव है जलाना, क्योंकि उसकी वस्तुगत शक्ति है दाही का जलाना। वैसे ही नाम को उच्चारण कोई जान कर करे या अनजान में करे, उस नाम का फल मिलेगा उसको, उसका पाप समाप्त होगा ही निश्चित रूप से। तो बड़ा सुंदर प्रवचन किए हैं। तो वैसे ही भगवान की सेवा कोई जान कर करे या अनजान में करे, उसके अज्ञात सुकृति का भी फल वैसा ही मिलेगा। तो ये बेचारी आदिवासिनी कुछ जानती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ कृष्ण के विषय में उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन कृष्ण को फल प्राप्त करने की लालसा देखकर उसके मन में आया कि बच्चे को देना चाहिए, तो दे दी, और जितना चाहे उतना दी। तो इस देने से तुम जो चाहो सो ले लो बेटा, इस तरह उसने कृष्ण के हथेली में उतना फल रख दिया जितना उसके हाथ में आ सकता है, या जितना कृष्ण स्वीकार किए। वास्तव में कभी कभी हम लोगों को अज्ञान वश यह पता नहीं चलता कि हमसे जो सेवा बन जाती है भगवान के चरणों में, हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है, हमारे पुरुषार्थ की बात नहीं है, यह तो भगवान की विशेष कृपा है कि हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम समर्थ हैं उनकी सेवा करने में। अगर हम समर्थ होते तो प्रतिदिन तुलसी देवी से कहने की जरूरत क्या है कि सेवा अधिकार दियो। सेवा करने का अधिकार भी भगवान की ओर से मिलता है। एक बार बरसाना की घटना है कि नंदगांव में बहुत अच्छा सेवा किए टीके चौधरी दुबई वाले, तो वे पावन सरोवर की सफाई कर दिए, लेकिन बहुत अहंकार के साथ। किसी भी ब्रजवासी और साधुओं को कुछ नहीं समझते थे, सब मूर्ख हैं, पागल हैं, कमाते खाते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते थे। ये सब आलसी हैं, कामचोर हैं, कोई किसी को कुछ मतलब नहीं। धन तो खूब लगाया, 30-35 लाख रुपया लगाया, लेकिन अहंकार के साथ। तो उसी अहंकार में बाबा के पास भी चले गए, बरसाना रमेश बाबा के पास, और ऐसी ही कुछ गाली दिए साधुओं को। तो बाबा सुनते रहे, कहे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सेवा किए। चाहते थे कि जल्दी जाए, सबकी निंदा कर रहा है, लेकिन कुछ कह कर फिर आया महाराज के पास। कहे महाराज, गुरु महाराज के पास, कि आपके कहने से मैंने वहां कर दिया कुछ सेवा, लेकिन सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं किसी में दम है, सब पाखंड कर रहे हैं। तो महाराज कहे नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, आप सेवा किए ठीक है, लेकिन किसी पर कुछ मत बोलिए। तो कहे महाराज, अब आपकी क्या इच्छा है, कैसे कुछ किया जाए बताइए। तो महाराज कहे कि नंद लाला के तो कर दिए, लेकिन विषभानु जो सरोवर है बरसाना में बहुत गंदा पड़ा है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए अगर संभव हो तो। एक लड़का लगा हुआ है हरिबोल, उसकी सहायता कीजिए। तो कहे अच्छा ठीक है, उसको हमसे संपर्क करने को कहिए। तो फिर जैसे तैसे वहां भी स्टार्ट कर दिए, लेकिन वहां फिर रमेश बाबा आदि सबको गाली दे रहे थे। तो उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बाबा को बुलाने के लिए एक लड़का भेजे। तो बाबा किसी कार्य व्यस्तता बस या जैसे भी कहे कि ठीक है, प्रारंभ कर लीजिए, फिर हम बाद में आएंगे, नहीं आ पाए जैसे जो भी कारण हो। तो वहां बहुत गाली दे रहे थे, संयोग से मैं भी वहां चला गया, एक और लड़का था। तो इतना बड़बड़ा रहे थे बाबा पर कि हम लोग तुरंत 1-2 मिनट में ही चले आए। तो परिक्रमा करते हुए बाबा के पास गए। तो जो मेरे साथ लड़का था वो कहने लगा, बाबा वो तो ठीक है चौधरी बहुत गाली दे रहा है सब साधुओं को, आपको भी। तो कोई बात नहीं, हम उसके चरणों को धोकर पी लेंगे, सिर पर चढ़ा लेंगे। इसलिए नहीं कि वो धनी व्यक्ति है या बहुत पैसा लगाया और बहुत कुछ किया, इसके लिए उसका चरण नहीं धो सकते हैं या उसको प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके कमाई को नंदलाला ने स्वीकार किया। तो वह वही सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो वही धन वही शरीर पावन है, पवित्र है, कृतार्थ है, जिसको भगवान ने स्वीकार किया। तो भगवान उसके धन को स्वीकार किए, इसलिए वो पूज्य है। लेकिन उसका स्वभाव, उसका व्यवहार जो दिख रहा है वो उसका है, लेकिन भगवान उसको ऐसे स्थिति में भी स्वीकार करते हैं, इसलिए वो पूज्य है। कोई बात नहीं, स्वभाव बस कहता है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पूज्य है। उसके प्रति दोष दृष्टि मत करो, आप लोग दोष दृष्टि मत कीजिए कि वो गलत आदमी है। भगवान उसको स्वीकार किए इसलिए पूज्य है, उसका सेवा उसकी धन स्वीकार किए। तो इस प्रकार यहां श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले में वे भौतिक और आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ा कर देते हैं। व्यर्थ नहीं होता है कृष्ण की सेवा। मूल बात है प्रेम का विनिमय। अगर कोई प्रेम से समर्पित करता है तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। जत करोसी जदश्नासी, जत ज्योहोसी ददासी जत, जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, दान करते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे। भक्तों के प्रेशर से नहीं कि देना चाहिए देना चाहिए दीजिए। कभी कभी तो लोग दूसरों को सुनाने के लिए भाव में आकर ज्यादा अनाउंस कर देते हैं, अब बाद में जब घर में जाते हैं तो विचार करने ज्यादा बोला गया यार, अब दे नहीं पाते हैं। अब भक्त लोग उसको लेने में बार 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 जाना पड़ता है, वसूलने में भक्तों की नानी मर जाती है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। किंतु यदि कृष्ण को कोई कुछ देना चाहता है तो उससे कृष्ण को लाभ नहीं है, उसी को लाभ है देने वाला को। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया गया है भागवतम में। प्रभुपाद ये नहीं संकेत कर रहे हैं कि वो दृष्टांत कहाँ है, कहते हैं कि जब किसी को अपने मुख को सजाना होता है और दर्पण में मुख का प्रतिबिंब देखता है तो प्रतिबिंबित मुख अच्छा लगे, इसके लिए अगर वह अपना कोई पाउडर शीशा पर लगाने लगे तो उसे नहीं सजेगा। दर्पण में मुख को देखने के लिए, सुंदर देखने के लिए अपने चेहरे का श्रृंगार करना पड़ेगा, तो प्रतिबिंबित स्वतः सज जाएगा। तो प्रतिबिंबित चेहरा को सजाने के लिए मूल चेहरे को सजाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण की सेवा करें तो बदले में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम सुखी हो जाएंगे, हम उनके अंश हैं। ममैव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं, वे आत्मा राम है, उनको अपने लिए कोई जरूरत नहीं है, हमसे अपेक्षा रखते हैं हमारे लिए। इस बात को श्री प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से कहते हैं। सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने स्तुति में बोलते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः कर्णो विणेते यद्यत् जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो नृसिंह देव के चरणों में प्रहलाद महाराज निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, कोई यदि यह सोचे कि हम अपने अपना धन अपनी कमाई आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको देने से उसको ही मिलता है, क्योंकि नैवात्मनः प्रभुरायम् निज लाभ पूर्णो, क्योंकि आप तो अपने लाभ से अपने सुख से सदा संतुष्ट हैं, आप आत्मा राम हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप पूर्ण काम है। मानम जनाद विदुष करुणो विणीते, लेकिन आप करुणा करके लोगों के उपहार को स्वीकार करते हैं दया करके। यद्यत् जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। वही उदाहरण देते हैं जैसे प्रतिबिंबित चेहरा को सजाने के लिए मूल चेहरा को सजाना पड़ता है, वैसे ही प्रतिबिंबित जीवात्मा को सुख प्राप्त करने के लिए मूल परमात्मा आपकी सेवा करनी पड़ती है। लोग जब आपकी सेवा करते हैं तो वो सुखी होते हैं, उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कथाएं कह रहे हैं आगे। फिर सरित गिरगतम कृष्णम भग्नार्जुन मथा वहत रामम च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकै भृशम नोपयातम यदाहुत तो क्रीड़ा संगे न पुत्र कौ जसोदा प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलम। तो कभी कभी भगवान खेलते रहते थे बच्चों के साथ, और खेलते हुए जमुना तट पर चले जाते, क्योंकि गोकुल एकदम जमुना तट पर है, और वहां आनंदित होके बच्चों के साथ रम जाते थे, खेल में इतना रम जाते थे कि उनको सुबह का भोजन का भी ध्यान नहीं रहता था। तो माता रोहिणी भोजन तैयार करके बच्चों को खोजने लगती, कृष्ण बलराम किधर गए। तो यहाँ कृष्णम भग्नार्जुन मथा वहत, कृष्ण के विषय में एक विशेष बात कहते हैं कि जमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाला कृष्ण, सरित तीर गतम कृष्णम, जमुना के तट पर गए हैं कृष्ण। कौन कृष्ण? जो जमलार्जुन को उखाड़ा है, तोड़ा है। तो रामम च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकै भृशम, तो रोहिणी देवी भोजन बनाकर तैयार करके तब खोजने के लिए जाती थी, तो कृष्ण बलराम जमुना के तट पर खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो वहां जाकर रोहिणी देवी उनको पुकारती है, ओ कृष्ण ओ बलराम आओ, जल्दी आओ, भोजन तैयार है, खा लो। तो पुकारती थी रोहिणी जी, यद्यपि रोहिणी जी की सेवा थी भोजन बनाना, और जसोदा जी खिलाती थी प्रेम से, या स्नान कराती, कपड़ा पहनाती जसोदा जी, और रोहिणी जी उनके रुचि के अनुसार भोजन तैयार करती थी। और कभी कभी जसोदा जी किसी दूसरे काम में व्यस्त है तो रोहिणी जी भी खिला लेती। तो रोहिणी जी उनको पुकारने के लिए गई, बड़ा सुंदर वात्सल्य का वर्णन है कुछ श्लोकों में, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। खेलने में इतना मस्त है, इतना मस्त है कि निकट जाकर पकड़ कर कहती है बेटा चलो भोजन तैयार है खा लो। लेकिन वो कृष्ण को पकड़ती तो बलराम भाग रहे हैं, बलराम को पकड़ती तो कृष्ण छुड़ाकर भाग जाते हैं। दोनों रोहिणी जी के बुलाने से नहीं आए। तो नोपयातम यदा हुतौ क्रीड़ा संगे न पुत्र कौ, जब रोहिणी जी के बुलाने पर दोनों बच्चे नहीं आए, खेल में ही रमे हुए थे, तब रोहिणी जी जसोदम प्रेषया मास रोहिणी पुत्र वत्सलाम, तब रोहिणी जी पुत्र वत्सला रोहिणी स्नेहमयी रोहिणी जी अब जसोदा जी को भेजी। पुत्र वत्सलाम दोनों के लिए है, जसोदा और रोहिणी दोनों के लिए। तो जसोदा प्रतिदिन खिलाती थी तो हो सकता है उनके बुलाने से आएगा, हमारे बुलाने से नहीं आ रहे हैं। तो खेल में इतने लगे हुए थे कि वो नहीं आ रहे थे। तब रोहिणी जी जाकर जसोदा जी को कही, करे बुला लाओ आ नहीं रहे हैं सब। तब जसोदा जी गई। क्रीडंतम सासु तम बालई अति बेलम सहा ग्रजम जसोदा जोह वित कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी। अब जसोदा जी के विषय में विशेष वर्णन करते हैं कि कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ, बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए थे। वहां माँ जसोदा गई और पुकारने लगी, ओ लाला, ओ कृष्ण, ओ बलराम, आओ बेटे भोजन तैयार है। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, उसी तरह खेल रहे हैं, जोर जोर से पुकार रही है आओ आओ बेटा आओ। तो उस जसोदा के अवस्था का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जसोदा जो हवित कृष्णम, कृष्ण को देखकर, बलराम को देखकर पुकार रही है, सहाग्रजम अग्रज के साथ कृष्ण को बुला रही है, मतलब कृष्ण को भी बुला रही है, बलराम को भी बुला रही है, प्रेम से पुकार रही है। उस समय माँ जसोदा के अतिशय वात्सल्य के कारण उनके अस्तन का दूध चुचुआ रहा है, एकदम कंचुकी से बाहर दूध चूता हुआ दिख रहा है। पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी, पुत्रों के स्नेह के कारण स्नुतस्तनी, चूता हुआ दूध वाली, जिनके स्तन का दूध चू रहा था, ऐसी माँ जसोदा बच्चों को पुकार रही है। उनके वात्सल्य सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कितना स्नेहमयी जननी है। हे रामा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब, हे बेटे, हे कृष्ण, हे कमल नयन, हे अरविंदाक्ष, आओ मेरा स्तन पियो। अलम बिहारे छुत शांत, हे बेटे बहुत खेले अब थक गए हो, क्रीड़ा शांतोषी पुत्र का, बेटे खेलते खेलते अब थक गए हो, बस करो, देखो तो सही, खेलने का असर तुम्हारे शरीर पर दिख रहा है, तुम दुबले पतले हो रहे हो, अथवा तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाओगे, बिना खाए हुए खेलोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, बेटा आओ सुनो खाओ, पुकार रही, बस करो, देखो तुम भूख से दुबले हो रहे हो। कभी कभी भूख लगता है तो लगता है कि सारी इंद्रियों में कमजोरी हो गई, रोज रोज खाते हैं, एक दिन उपवास करने पर लगता है कि अब दिखता ही नहीं है धुंधला दिखने लगा, और कभी कभी पैरों में कमजोरी, एकदम अद्भुत स्थिति होती है। तो देखो बेटा, खेलने के कारण, भूखे अवस्था में खेलने के कारण तुम कमजोर हो रहे हो, तुम दुबले हो रहे हो, आओ आ जाओ दूध पी लो। अगर मानो घर में नहीं जाओगे, इतना व्यस्तता है, बीजी खेल है, तो यहीं पर आ गई हूं, स्तन पी लो, तात यही स्तनम पीब, स्तन दिखा रही है, आओ पी लो बेटा दूध पी लो। अच्छा, कृष्ण के लिए पुकारी, तो कृष्ण जब दो बड़े छोटे भाई एक साथ होते हैं तो छोटा तो इतना मस्त रहता है, जो बड़ा करता है वही छोटा करता है, और कभी पकड़ ली तो हमको कह रही है भैया को नहीं, तो अब इसलिए भैया को कहने पर छोटा अपने आप मान जाएगा। तो हे रामा गच्छ तत्तासु सानुजम कुल सानुज कुल नंदना, हे राम हे श्री बलराम, बलराम जी को पुकारती हैं, बेटा बलराम हे प्यारे बेटा तुम तो संपूर्ण कुल को आनंद देने वाले हो, हे कुल नंदना कुल नंदन बलराम, इधर जदकुल को भी आनंद देने वाले हैं और ब्रज के गोकुल को भी आनंद देने वाले हैं। तो दोनों कुल से इनका बहुत प्रेम था, स्वाभाविक निकल रहा है कुल नंदना समूचे कुल को आनंद देने वाले। आसु सानुजह अपने भाई के साथ आ जाओ बेटा, प्रात रेव कृताहार तद भवान भोग तुम अर्हती, हे बेटे अब तक तुम लोग कुछ खाए नहीं हो, आज सवेरे से खेल रहे हो, अब तुम्हें खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट का समय हो गया, खा लो बेटे खा लो, पुकार रही हैं बलराम जी को कृष्ण को, दोनों को पुकार रही हैं, बेटा आओ खाओ। अजो हवित शब्द का अर्थ है बारंबार पुकारना, बार बार पुकार रही है, एक बार केवल नहीं बार बार कह रही है, हे कृष्ण 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 अरविंदाक्ष तात ये स्तनम पिब, हे रामा गच्छ तत्तासु सानुज कुल नंदन प्रात रेव कृताहार तद भवान भोग तुम अर्हति। तो इतने पर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर कह रहे हैं प्रतीक्षते त्वाम दासार भोक्ष मारो ब्रजाधिप यही वयो प्रियम देही स्वगृहान यात बालका। इसके बाद कहती है बेटे तुम्हारे पिताजी ब्रजराज नंद बाबा घर में आ गए हैं और वो भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षते त्वाम दासार्य भोक्ष मारो ब्रजाधिप, खाने के लिए तैयार हैं, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु अभी तक तुम लोग आए नहीं, इसलिए वो खा नहीं रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ बेटे आओ खाओ, उनके साथ अपने पिताजी का इंतजार करो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका अर्थ है कि ये रोज रोज ये अपने पिताजी के साथ खाते थे, तो पिताजी के खाने का जो आकर्षण है यह कहकर बुलाना चाहती है कि तुम लोग अभी खेलने में हो और वो आकर खाकर चले जाएंगे तो फिर कब खाओगे, तो एक लोभ देती है कि पिताजी तुम्हारा वाट कर रहे हैं, ब्रजराज भोजन करने बैठे हैं, बेटे आ जाओ। अच्छा उनको तो आने को कह रही है और साथ ही ग्वाल वाल जो है वो खेलने में मस्त है, तब जसोदा जी को उन पर भी क्रोध आता है कि ये भी बंद नहीं कर रहे हैं, अरे बच्चे तुम जाओ अपने घर। जसोदा जी उनको भी कहती है यही वयो प्रियम देही स्वगृहान जात बालका, अरे बच्चों तुम लोग भी अपने घर जाओ, दिन भर केवल खेलना, जाओ खा कर आओ, तुम लोग भी जाओ अपने घर जाओ, स्वगृहान जात बालका, अरे बच्चे तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, भोजन करके आओ। तो इस प्रकार पुकार रही हैं, तुम लोग जाओ अपने घर, तुम लोग भी खा कर आओ तब खेलना, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे हैं, फिर भी खेलने में लगे हुए हैं, तो पकड़ लेती हैं, पकड़ करके फिर आगे कहती हैं बेटे देखो धूली धूसरितांगस्तम पुत्र मंजन मावह, क्या रूप बनाए हो, कितना अच्छा वस्त्र पहनाकर भेजी थी लेकिन धूल में लोटकर सुअर जैसा लग रहे हो, धूली धूसरितांग तम पुत्र मंजना वह, देखो तुम्हारे शरीर में धूल लगा हुआ है बेटे, फिर से स्नान करना पड़ेगा और चलो साफ सुथरा हो, हमेशा नहीं ऐसे खेलना चाहिए, जन्मक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देही गा सुचि, कई कारण बता रही है आने का, कई आकर्षण दे रही है कि इसको कहने से जाएंगे, इसको कहने से पिताजी खा रहे हैं, तुम्हारा शरीर दुबला हो रहा है, तुम कमजोर हो रहे हो, कई चीज कह ली लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह रही है, कहीं बेटे देखो तो सही तुम्हारे एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, जल्दी से स्नान कर लो, जल्दी स्नान करो, और आज तुम्हारे जन्म नक्षत्र आ गया है, ये पंडित जी बताए हैं कि 9 बजे के बाद जन्म नक्षत्र आ जाएगा, उस समय तुमको ब्राह्मणों को गाय दान करना पड़ेगा, तो जन्म नक्षत्र अद्य अभी आने वाला है, भवतो विप्रेभो देही गा सुचि, बेटा तुम लोग नहा धोकर तैयार नहीं होगे तो कैसे दान करोगे। उसके पहले तैयार होना पड़े, पंडित जी लोग भी आ गए तो उनको दान करना पड़ेगा ना। तब कहते हाँ दान तो करना पड़ेगा, ये आइटम आकर्षक है। तो कहते हाँ देखो और बच्चे नहा धो लिए, कुछ लड़के घर से नहा धोकर कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं। तो कहते पश्य बयान शास्ते मातृ मिष्टान सलंकृतान, देखो ये बच्चे अभी तुम लोग खेलने में लगे हो, जाकर नहाकर कपड़ा पहनकर खा पी कर आ गए। तुम च स्नात कृताहार विहरस्व सलंकृत, फिर से खाकर नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहनकर फिर खाकर खेलना, हम खेलने को थोड़े रोक रही हैं, लेकिन नहा धो लो खा लो समय से और ब्राह्मणों को दान करना है। देखो तुम्हारे खेल पर नहीं ब्राह्मण लोग इंतजार करेंगे, न वो नक्षत्र इंतजार करेगा, जो दान का टाइम है उसी पर दान दिया जाएगा ना। तुम लोग खेलने में मस्त रहोगे और टाइम निकल जाएगा। तब कृष्ण कहते हाँ अब चलना चाहिए, दान देना है। तो इस प्रकार वैदिक परंपरा ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, वैष्णवों को दान दिया जाता है। माता यशोदा कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं, लेकिन सबसे आकर्षक आग्रह है कि ब्राह्मणों को दान देना है। यह दान बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबको करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्य में वो तत्व, ये करना ही चाहिए। और यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम, ये बड़े बड़े मनीषी धर्मात्मा शुद्धात्मा को भी पावन करने वाला है। तो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बढ़े चढ़े लोगों को भी ये करना पड़ता है, तीन कर्म यज्ञ दान और तप। श्रील प्रभुपाद एक विशेष बात कहते हैं कि अपने जन्मोत्सव मनाने वाले जो बर्थडे मनाते हैं अपना या बच्चों का या किसी का या मित्र दोस्त का, तो उनको तीनों काम करना चाहिए, यज्ञ दान और तप, या इसमें से एक तो जरूर करना चाहिए, दान तो जरूर करना चाहिए। खाली उत्सव मनाकर भोजन करके आनंदित हुए ठीक है, लेकिन अपने इष्ट मित्र ब्राह्मणों वैष्णवों को दान भी करना चाहिए। तो इस प्रकार माता बुला रही हैं, बच्चे भी भूखे हैं और आप लोग भी भूखे हैं, तो अब यहीं पर छोड़ते हैं खाने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।